ऋणदाता कहानी का शेष अंश, पेज 66। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे, आजाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, धूपेन धाय पाम, लाल चंदन रक्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलाल। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलाल आता है वहाँ अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तर बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना आता था, जो वह दो वक्त के लिए काफी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का, जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था। देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए। यह सोचकर वे डटकर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता। फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता या ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो आती थी। जब वे सो जाते थे, सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर की गुटर गू सुनते, और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर से लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाजें वे पहचानने लगते, और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी सा जनानी आवाज थी, शेख साहब की बीबी की। एक और तीखी जनानी आवाज थी, उनके स्वर में वह का खुदरापन था। घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री, एक विनीत स्वर युवा था, जो प्राय पहली आवाज की जैबू जैबुनी पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसलिए शेख साहब की लड़की जुबनिंसा का स्वर था। दो मर्दानी आवाजें भी सुन पड़ती थी, एक तो आदिब मियाँ की, जो शेख साहब का लड़का हुआ और जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज, जो शेख साहब की आवाज है। इस आवाज को देवेंद्र लाल सुन तो सकते हैं, लेकिन इसकी शब्द के शब्दाकार कभी पहचान में न आते। दूर से तीखी आवाजों के बोल ही स्पष्ट समझ आते हैं। जैबू की आवाज से देवेंद्र लाल का लगाव था, घर की युवती लड़की की आवाज थी। पेज 67। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी, इसलिए मन ही मन वे जुबनिंसा के बारे में अपने उहापोह को रोमानी खिलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों के फिरका परस्ती का जहर भरती होगी, भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है, वह बात ठीक भी है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रव की जड़ भी होता है। ऐसे घर में सभी लोग जहर फैलाने वाले हो तो अचंभव क्या? लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते खाने में कौन सी चीज किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज वाली स्त्री का रहता था, पर परोसाना शायद जुबिनसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देविंदर लाल खाना खाते और कुछ ज्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देविंदर लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आधबार साहा टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आदिब जब खाना रखकर चला गया तब देविंदर लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलनी सी लगी। उन्होंने एकाध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर दो एक फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौके। तीन एक फुलकों के बीच की तह में कागज की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देविंदर लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देविंदर लाल उसे फिर गोल करके फेंक देने वाले ही थे कि हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखकर उस पर कुछ लिखा था। केवल एक सतर, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देविंदर लाल ने कागज की चिंदिया की, चिंदियों को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जैबू जैबू जैबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास आकर खड़ा हो गए। उनका यह खाना है देवेंद्र लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के। पेज 68। जैबू के पिता के, कुत्ता यहाँ कहाँ है? देविंदर लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सरकी, बिलाल बैठा था। देविंदर लाल ने बुलाया। वह लपक कर कंधे पर आ रहा। देविंदर लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देविंदर लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुचकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का है ना, वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, चाहता नहीं हूँ पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यही तो जानना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है, लो खाओ। बिल्ली ने मांस खाया। हड्डी झपटना चाहता था, पर देविंदर लाल ने उसे गोदी में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देविंदर लाल उसे गोद में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य अखाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे? जब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है, तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। यों बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान न खाए वह और बात। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उनके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में मर गया। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देवेंद्र लाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती रहीं। आज़ादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र, एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी की विष दिया जा रहा है। देवेंद्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। पेज 69। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया। दो घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रक खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा, फिर ऊपर के खाने में से दो एक कागज, दो एक फोटो, एक शेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फांद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना घटना नहीं है, घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति है, इसलिए मानव को दिख जाती है और वह पूर्णता का आनंद पा लेता है। घटना की संगति मानव पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या देव या भगवान की बनाई हुई संगति है, इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसलिए उसके बाद तो कुछ हुआ और जैसे हुआ वह बताना जरूरी नहीं। इतना बताने में काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे। तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मानती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और यह भी याद दिलाती हूँ कि उनकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है, सिर्फ यह इल्तजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा, इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज। देवेंद्र लाल की स्मृति में शेख अताउल्लाह की चर्बी से चिकनी भारी आवाज़ गूंज गई, जैबू जैबू, और फिर गैराज की छत पर छटपटाकर धीरे धीरे शांत होने वाले बिलार की वह दर्द भरी कराह जो एक बार लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी की छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दिया। कहानी समाप्त।